नमस्कार भारत, तारीख 20 जून दिन बुधवार, मैं हूँ मानसी दास। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से अमेरिका ने खुद को किया बाहर।
When a so-called human rights council cannot bring itself to address the massive abuses in Venezuela and Iran.
क्या सोची समझी रणनीति के तहत गिराई गई जम्मू कश्मीर में सरकार?
खुद ही अपनी सरकार गिराई, इसलिए गिराई ना, कहीं पे आप अपने आप को कमजोर पा रहे थे या आपको आशंका थी कि आपका सपोर्ट कम हो रहा है।
उत्तर प्रदेश में पीसीएस की मुख्य परीक्षा का पेपर लीक।
आयोग अपना अपना पर्यवेक्षक भेजता है, वो पर्यवेक्षक किस लिए भेजता अगर ऐसा हुआ है तो, ये बड़ा सवाल है।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधु वासिनी से। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग होने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की दूत निकी हेली ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। हेली ने काउंसिल को राजनीतिक पक्षपात से प्रेरित बताया और कहा कि ऐसी संस्था असल में मानवाधिकारों को नुकसान पहुँचाती है। वहीं काउंसिल के प्रमुख जेद बिन राद अल हुसैन ने कहा है कि अमेरिका को मानवाधिकारों की रक्षा से पीछे नहीं हटना चाहिए। निकी ने कहा कि वो ये साफ करना चाहती हैं कि काउंसिल से बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका मानवाधिकारों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहा है। काउंसिल से अलग होने का अमेरिका का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब प्रवासी बच्चों को उनके माता पिता से अलग किए जाने की वजह से ट्रंप प्रशासन की पहले से काफ़ी आलोचना हो रही है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों के बच्चों को उनके माता पिता से दूर करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि अगर देश में अवैध रूप से घुसने पर माता पिता को जेल होती है तो बच्चों को उनसे दूर करना होगा। हालांकि ट्रंप ने अब ये भी कहा है कि वो इस नियम में बड़े बदलाव करने के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में वो जल्दी ही अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों के साथ बैठक भी करेंगे। उन्होंने कहा,
You have to stand for something, and you have to stand for safety and security of our country.
आपको देश की सुरक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम लोगों को यूं ही घुसने नहीं दे सकते, उन्हें एक प्रक्रिया के तहत ही आना होगा। हो सकता है कि ये राजनीतिक तौर पर सही या गलत हो, ये सच है कि हमें परिवारों को अलग होने से रोकना होगा, लेकिन हमें अपने देश की सुरक्षा भी करनी है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। निकारागुआ में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने और कईयों के घायल होने की खबर है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि सरकारी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस दौरान हुई हिंसा में लोगों की जानें चली गई। प्रदर्शनकारियों ने ये बैरिकेड्स 2 महीने पहले मसाया शहर में लगाए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने उनके साथ ज्यादती की है। विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत अप्रैल में सरकार द्वारा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के बजट में कटौती किए जाने के बाद हुई थी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यूरोप मौजूदा वक्त में असली मानवीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। वो बर्लिन में जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैक्रों ने कहा कि इस बार यूरोपीय संघ के सम्मेलन में प्रवासियों से जुड़े बड़े सवाल यूरोपीय देशों के सामने होंगे। उन्होंने कहा,
C'est aujourd'hui un vrai choix de société qui est...
आज समाज के सामने असली चुनौती है और शायद ही मानव सभ्यता की चुनौती है। हम उम्मीद करते हैं कि यूरोप पूरी एकता और संप्रभुता के साथ इन चुनौतियों का हल निकालेगा। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शब्द। दूसरी तरफ एंगेला मर्केल ने भी स्वीकार किया है कि उन पर दक्षिणपंथी नेताओं का दबाव है और प्रवासियों के मुद्दों पर यूरोप को एक मत से फैसला लेने में मुश्किल हो रही है। बीबीसी समाचार।
بی بی سی ہندی سے دن کی پہلی سبھا نمسکار بھارت سن رہے سبھی شروتاؤں کو مانسی داش کا نمسکار۔ یہ کارکرم آپ ریڈیو کے ساتھ ساتھ بی بی سی ہندی ڈاٹ کام، موبائل اور فیس بک پر بھی سن سکتے ہیں لائیو۔ خبروں کی شروعات کرتے ہیں ایک انتراشٹریہ خبر سے۔ امریکہ نے خود کو سنیکت راشٹر مانوادھیکار کاؤنسل سے باہر کر لیا ہے۔ ادھر کاؤنسل کے پرمکھ زید بن راد الحسین نے کہا ہے کہ امریکہ کو مانوادھیکاروں کی رکشا سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بی بی سی سنواداتاؤں کے بھیجے بیورے کا سار سنیے سندھواسنی ترپاٹھی سے۔
امریکی ودیش منتری مائک پومپیو اور سنیکت راشٹر کے لیے امریکہ کی دوت نکی ہیلی نے اس کی گھوشنا کی ہے۔ نکی ہیلی نے کاؤنسل پر راجنیتک پکشپات سے پریرت ہونے کا آروپ لگایا ہے۔ جب ایک تتھا کتھت مانوادھیکار کاؤنسل وینیزویلا اور ایران میں ہو رہے مانوادھیکاروں کے الگھن کے بارے میں کچھ نہیں بول پاتی اور کانگو جیسے دیش کا اپنے نئے سدسیہ کے طور پر سواگت کرتی ہے تو پھر یہ مانوادھیکار کاؤنسل کہلانے کا ادھیکار کھو دیتی ہے۔ اصل میں ایسی کاؤنسل مانوادھیکاروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ تھے سنیکت راشٹر میں امریکہ کی دوت نکی ہیلی کے شبد۔ نکی نے کہا کہ کاؤنسل سے باہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ مانوادھیکاروں کے پرتی اپنی ذمہ داریوں سے مکر رہا ہے۔ انہوں نے پچھلے سال بھی یو این ایچ آر سی پر اسرائیل کے خلاف دربھاونا اور بھید بھاؤ پورن رویہ اپنانے کا آروپ لگایا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ پریشد میں اپنی سدسیتا کی سمیکشا کرے گا۔ امریکی ودیش منتری مائک پومپیو نے بھی یو این ایچ آر سی کے ارادوں پر سوال اٹھائے اور کہا کہ یہ اپنے ہی وچاروں کو بنائے رکھنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں اس بارے میں کوئی سندیہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں یو این ایچ آر سی کا مقصد نیک تھا، لیکن آج ہمیں ایمانداری برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج مانوادھیکاروں کی مضبوطی سے رکشا نہیں کر پا رہا ہے۔ اس سے بھی برا یہ ہے کہ کاؤنسل آج بڑی ہی بے شرمی اور پاکھنڈ کے ساتھ دنیا کے تمام حصوں میں ہو رہے مانوادھیکاروں کے الگھن کو اندیکھا کر رہا ہے۔ یہ تھے امریکی ودیش منتری مائک پومپیو کے شبد۔ یو این ایچ آر سی کی استھاپنا سال 2006 میں ہوئی تھی۔ اس سے الگ ہونے کا امریکہ کا فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب پرواسی بچوں کو ان کے ماتا پتا سے الگ کیے جانے کی وجہ سے ٹرمپ پرشاسن کو آلوچنا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
رپورٹ سنا رہی تھی سندھواسنی ترپاٹھی۔ چلتے ہیں جموں کشمیر، جہاں بیتے کچھ وقت سے تناؤ میں چل رہا بی جے پی اور پی ڈی پی کا گٹھ بندھن آخرکار ٹوٹ گیا ہے اور وہاں سرکار گر گئی ہے۔ بی جے پی اور پی ڈی پی سرکار گرنے کے بعد اب راجنیتک دلوں کا ماننا ہے کہ کشمیر کے پہلے سے خراب حالات اور بدتر ہو سکتے ہیں۔ سنیے شری نگر سے ماجد جہانگیر کی رپورٹ۔
بیتے تین ورشوں سے کشمیر میں اشانت حالات کے چلتے کل سوموار کو راجیہ میں بی جے پی پی ڈی پی گٹھ بندھن سرکار ٹوٹنے کے بعد کشمیر کے راجنیتک دل گاٹھی میں سامان्य حالات پیدا ہونے کی بہت کم امیدیں لگا رہے ہیں۔ سی پی آئی ایم کے اسٹیٹ سیکرٹری محمد یوسف تارغامی کہتے ہیں کہ کشمیر کے حالات اب بھوشیہ میں اور بھی بگڑ سکتے ہیں۔
لیکن یہ توقع اب جو مرکزی رول برائے راست نافذ ہوگا، گورنرز رول کی شکل میں افسروں کا راج ہوگا، اور زیادہ منمانی بڑھے گی، اور زیادہ طاقت آزمائی کا سلسلہ شروع ہوگا، جاری رہے گا۔ اس سے ہماری نظر میں جموں کشمیر کے حالات بہتر نہیں بلکہ ان میں ابتری آنے کا ہمیں اندیشہ ہے۔
ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین اور پورو منتری غلام حسن میر کہتے ہیں کہ بی جے پی پی ڈی پی گٹھ بندھن سرکار ٹوٹنے سے کشمیر کے عام لوگوں نے راحت کی سانس ضرور لی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے حالات آنے والے دنوں میں کیسے ہوں گے، اس کے لیے سمے کا انتظار کرنا ہوگا۔
اب دیکھنا ہے کہ وہ کون سی کروٹ لے۔ ایک چیز تو ہے جو کامن ماس اس الائنس کے خلاف تھی، وہ اب کیا اس چیز سے، اب ان کو تو خوشی ہوئی ہوگی کہ واقعی یہ گٹھ بندھن ٹوٹ گیا۔
وہیں وپکش نیشنل کانفرنس کے ورشٹھ نیتا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں گٹھ بندھن سرکار ٹوٹنے کے بعد بھی چرم پنتھ کا دبدبا برقرار رہ سکتا ہے۔
اس سلسلے میں جو ہے حالات ملٹنسی رہے گی، کیونکہ ملٹنسی کے کافی مددگار ہیلپرز بنے ہیں اکراس دی بارڈر، دس سائیڈ آف دی بارڈر دیئر ویری مینی ایجنسیز دیٹ آر ڈوئنگ اٹ۔
حالانکہ عوامی اتحاد پارٹی کے ادھیکش انجینئر رشید کہتے ہیں کہ یہاں پہلے ہی عام لوگوں کے خلاف طاقت کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، جو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ वो कहते हैं कि कश्मीर का मसला एक राजनीतिक मुद्दा है, उसके लिए राजनीतिक हल ढूंढने की जरूरत है।
मैंने भी अर्ज किया कि जहाँ तक मेरी अकल है तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ने वाला है। इतना ही हो सकता है कि ताकत तो पहले ही काफी ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है आम लोगों के खिलाफ, तो उसके अलावा और क्या हो सकता है। बेहतर यह है कि मतलब सरकार पॉलिटिकल इनिशिएटिव ले ले और इसको लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से या सरकारी चेंज करने के पर्सपेक्टिव से न दे।
बीते 3 वर्षों में कश्मीर घाटी में अशांत हालात के दौरान सैकड़ों चरमपंथी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं, जबकि चरमपंथी हमलों में भी दर्जनों सुरक्षा कर्मी अभी तक मारे जा चुके हैं। बीते 3 वर्षों के दौरान दर्जनों आम नागरिक प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों और पुलिस के हाथों मारे जा चुके हैं। पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार टूटने के बाद क्या कश्मीर के हालात में किसी तरह का बदलाव आ सकता है, उसके लिए समय का इंतजार करना होगा। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
माना जा रहा है कि बीजेपी ने कश्मीर में सरकार से अलग होने का कदम लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। क्या बीजेपी कश्मीर मुद्दे को आम चुनावों में भुनाने की कोशिश करेगी? बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण से संपर्क किया और यही सवाल किया।
कश्मीर में पॉलिसी उनकी ज्यादा दबंग हो जाएगी, ज्यादा मस्कुलर हो जाएगी, कश्मीर में पोलराइजेशन बढ़ेगी इससे, और कश्मीर में मस्कुलर पॉलिसी इस्तेमाल करेगी सरकार आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड दे करके, और आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस जो कश्मीर में करेंगी और जो कश्मीर में पोलराइजेशन हो रहा है इसको लेके पूरे देश में बीजेपी जाएगी और पूरे देश में पोलराइजेशन भी करेगी और ये भी दिखाएगी कि हम मुसलमान चरमपंथियों के खिलाफ कैसे एक्शन लेते हैं। आप तो यही कहते थे ना कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाजपा को ले जाएंगे, तो कश्मीर में आपकी सरकार थी, खुद ही अपनी सरकार गिराई, इसलिए गिराई ना, कहीं पे आप अपने आप को कमजोर पा रहे थे या आपको आशंका थी कि आपका सपोर्ट कम हो रहा है।
तो आप इसको एक सोच समझकर रणनीति के तहत उठाया हुआ कदम मानते हैं जिसमें कश्मीर के जरिए देश में राष्ट्रवाद का झोंका लगाया जाएगा?
बिल्कुल, और ये इस बात से भी सिद्ध होता है कि सारे जो बीजेपी के एमएलए थे उनको दिल्ली बुलाया गया कल, उन सबसे बात करके ये डिसीजन हुआ है। और ये कहना कि सीज फायर पे डिफरेंसेस थे, ये बात भी सही है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती तो चाहती थी कि सीज फायर एक्सटेंड हो। सीज फायर के 2 फायदे हुए हैं, एक ये लगा कि शायद सरकार शांति प्रक्रिया फिर से शुरू करना चाहती है, ऐसा कहा भी गया, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरा ये हुआ कि सिविलियन कैजुअलिटी कम हो गई, जब फौज बाहर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में नहीं जा रही है तो पत्थरबाजी नहीं होती है, तो स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई तो पुलिस को और आर्मी को फायर नहीं करना पड़ा, तो उससे भी लोगों को काफी सहूलियत मिली।
लेकिन सर, एक और जहां धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात हो रही है, वहीं विपक्ष भी अपनी एकजुटता की बात कर रहा है। क्या आपको लगता है विपक्ष के पास भाजपा के इस कदम का कोई जवाब हो सकता है?
एक ही जवाब है कि सारी जो सेक्युलर फोर्सेस हैं वो इनको 1:1 कॉन्टेस्ट दें। अलायंस भले ही नेशनल लेवल पे ना हो, हर एक राज्य में अलग अलग किस्म का अलायंस हो, अलग अलग किस्म की सीट एडजस्टमेंट हो, ताकि एकीकृत विपक्ष का कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ हो, उससे बड़ी कोई स्ट्रेटेजी हो नहीं सकती।
भाजपा ने खुद क्यों गिराई जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार, बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण। कश्मीर में पहले से ही पेचीदा हालात राजनीतिक अस्थिरता के दौर में और भी मुश्किल हो सकते हैं। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने कश्मीर मामले पर वार्ताकार रह चुकी प्रोफेसर राधा कुमार से पूछा कि नए राजनीतिक हालात का कश्मीर के आम लोगों पर क्या असर हो सकता है।
मेरे ख्याल में तो ये सीज फायर को इतनी जल्दी बंद करना बहुत ही रॉन्ग बुरी पॉलिसी थी, इन्होंने बहुत गलती की, और मेरे ख्याल में इसका असर बुरा तो जरूर होगा। अब मुझे सबसे बुरा तो गवर्नर वोरा के लिए लग रहा है। आपको याद होगा जब वो गवर्नर बने तो सबसे पहले उनको वो सारा अमरनाथ यात्रा का जो हादसा था उसको डील करना पड़ा, अब फिर से सेन को एक बहुत गंभीर सिचुएशन को डील करना पड़ेगा। और ये तो ये लश्कर और जैश जैसे लोगों के लिए वो तो खुश होंगे इन चीजों के साथ, है ना, ये उन्हीं के हाथ में खेल दिया।
लेकिन जो आम कश्मीरी लोग हैं, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल, उसके बाद बढ़ती हुई मिलिटेंसी, और चिंता की बात यह है कि ये हालात और ज्यादा चिंताजनक होने की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं।
ये जो हुआ है इसका तो असर यही हो सकता है कि उनकी जिंदगियों में और अब दिक्कतें होंगी आने वाले महीनों में। और आप ये भी सोचिए ना कि अब गवर्नर रूल होगा, अब गवर्नर रूल ज्यादा टाइम के लिए नहीं होना चाहिए, फिर इलेक्शन कश्मीर में होने चाहिए, और आपको मालूम है कि कश्मीर में इलेक्शन ऑर्गेनाइज करने में कितना टाइम लगता है और वो कितने लंबे चौड़े इलेक्शन होते हैं और उसमें कितनी वायलेंस भी होती है।
आप कश्मीर में शांति प्रक्रिया का हिस्सा रही हैं और कश्मीर की जो शांति प्रक्रिया है वो दुनिया की सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। जो नए राजनीतिक समीकरण बने हैं इनका कश्मीर की जो शांति प्रक्रिया है, वार्ताओं की जो करने की बात की जाती है, उस पर क्या असर होगा?
यही तो हमारी पिछले 4 साल में कहाँ पीस प्रोसेस है ही नहीं, उसका ना नाम ना निशान दिखाई देता है। यही आशा थी कि ये सीज फायर के अनाउंसमेंट के साथ कोई पीस प्रोसेस शुरू हो। अब देखें तो फिर हम वापस वही स्थिति में कि कोई प्रोसेस है ही नहीं, कोई शांति की आशा कहाँ से लाएं हम।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 9 दिनों से उपराज्यपाल के घर पर जारी अपना धरना समाप्त कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज से बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने पूछा कि इस धरने से आखिर पार्टी को क्या हासिल हुआ।
धरना नहीं कहना चाहिए इसको। 9 दिन से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करने का उन्हीं के वेटिंग रूम में इंतजार करते रहे। 5 मिनट का समय भी मुख्यमंत्री के लिए नहीं निकला। कल करीब 7-8 मीटिंग्स रखी गई, इनमें सब में सारे IAS अधिकारी आए और 4 महीने बाद ऐसा हुआ है कि सारे अधिकारी मंत्रियों की मीटिंग में आए। अधिकारियों ने अपना रुख नरम करते हुए मीटिंग्स में आना शुरू किया और यही हमारी जो थी सबसे बड़ी मांग थी कि सरकार का काम जो है वो शुरू हो जाए, तो आज से वो काम शुरू हो गया। अब क्योंकि 4 महीने बाद IAS अधिकारी वापस काम पे आए हैं तो अब जो है इन समस्याओं के ऊपर सरकार तेजी से काम करेगी।
जी, एक और सवाल बीच बीच में उठता रहा है कि आम आदमी पार्टी लगभग 1 साल से शांति थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रही थी, अचानक पार्टी अपनी फिर से पुरानी धरना प्रदर्शन की रणनीति पे आ गई, तो ये बदलाव क्यों हुआ? क्या इसकी वजह राजनीतिक है या कुछ और है?
देखिए, हमें कई तरीके के राजनीतिक विश्लेषक और कई तरीके के राजनीतिक मित्र ऐसा कहते थे कि आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में बिल्कुल कुछ भी कहना बंद कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और पार्टी ने बिल्कुल भाजपा और नरेंद्र मोदी जी का नाम लेना बंद कर दिया और ये सिलसिला करीब 1-1.5 साल चला। मगर 1-1.5 साल में देखने में आया कि विधायकों के ऊपर पुलिस के केस बढ़े, मंत्रियों के ऊपर CBI और ACB के केस बढ़े, LG की तरफ से दिल्ली की सरकार को किसी भी तरीके का कोऑपरेशन जो था वो नहीं मिला, और जब अत्याचार सहने की जो क्षमता थी वो क्षमता जो है वो खत्म हो गई, तो फिर से सरकार ने ये बात कहने शुरू कर दी। कहना बड़ा जरूरी है प्रजातंत्र के अंदर कि आप जनता को बताएं कि आपको कौन लोग जो है परेशान कर रहे हैं।
कार्यक्रम में अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। बीते कुछ साल से विवादों में घिरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मंगलवार को एक और बड़ी लापरवाही सामने आई, जब PCS की मुख्य परीक्षा में छात्रों को उस विषय का पेपर बांट दिया गया जिसकी परीक्षा शाम की पाली में होनी थी। पूरी जानकारी के साथ लखनऊ से समीरात्मज मिश्र।
इलाहाबाद के केंद्र पर PCS 2017 की मुख्य परीक्षा दे रहे छात्र उस समय हैरान रह गए जब उन्हें सामान्य हिंदी की बजाय निबंध का पेपर बांट दिया गया। निबंध का पेपर शाम की पाली में होना था। गुस्साए छात्र परीक्षा भवन से बाहर निकल आए और परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश ने BBC को बताया,
इलाहाबाद में एक GIC परीक्षा केंद्र है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज शहर में, वहाँ पर सामान्य हिंदी की जगह निबंध खुल गया और निबंध का जो है हम लोग निरस्त कर दिए। हिंदी का हम लोग एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तैयार थे लेकिन लड़के नहीं माने, दोनों पेपर का निरस्त करने की मांग करने लगे। दोनों पालियों में परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है, सामान्य हिंदी और निबंध दोनों को निरस्त कर दिया गया है। इसका बाद में कोई डेट दिया जाएगा, बाद में कराया जाएगा, शेष परीक्षाएं यथावत होंगी।
बताया जा रहा है कि आयोग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जबकि मुख्य परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक हुआ हो। PCS की परीक्षा बेहद प्रतिष्ठित मानी जाती है। राज्य के प्रशासनिक अधिकारी इसी परीक्षा के माध्यम से चुने जाते हैं और कड़ी सुरक्षा और निगरानी में ये परीक्षा कराई जाती है। बावजूद इसके ऐसा कैसे हो गया, इस सवाल के जवाब में आयोग के सचिव जगदीश कहते हैं,
प्रश्न पत्र तो जो है ट्रेजरी में रखा जाता है, वहाँ से जैसे प्रथम पाली का प्रश्न पत्र हिंदी जाना था पर जो है सामान्य हिंदी लिखा था लेकिन भीतर उसमें निबंध के प्रश्न रख दिए थे। हाँ, ये गलती हुई है।
दरअसल UP लोक सेवा आयोग राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए और अधिकारी स्तर की अन्य सरकारी नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। परीक्षा लखनऊ के 11 और इलाहाबाद के 17 केंद्रों पर सोमवार से आयोजित हो रही है। आयोग की परीक्षाएं पिछले कुछ वर्षों से लगातार विवादों में रही हैं। अनियमितताओं को लेकर आयोग के खिलाफ महीनों तक छात्रों ने संघर्ष भी किया था और इसकी कई परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच भी चल रही है। इलाहाबाद के प्रतियोगी छात्र अशोक पांडे कहते हैं,
पहले पीसीएस 2015 का पेपर आउट हुआ, उसके बाद आरओ का आउट हुआ और इस बार तो मुख्य परीक्षा, आयोग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्य परीक्षा का पेपर आउट हुआ। पूरी तरीके से आयोग के जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो चुका है। इस पे सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। पेपर इसीलिए आउट होता था कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। प्राथमिक दृष्टि से तो ये लगता ही है कि ये नाकामी आयोग का है, गलती से हो सकता है, लेकिन एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि सारे एग्जाम सेंटर पे आयोग अपना अपना पर्यवेक्षक भेजता है, वो पर्यवेक्षक किस लिए भेजता है अगर ऐसा हुआ है तो, ये बड़ा सवाल है।
छात्रों के मुताबिक जिस मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है इसे टालने के लिए हजारों छात्रों ने ट्विटर और फेसबुक पर मुख्यमंत्री से अपील की थी। बहरहाल आयोग ने दोनों प्रश्न पत्र रद्द करके आगे की परीक्षाएं यथावत कराने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन छात्रों की नाराजगी और किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए लोक सेवा आयोग के इलाहाबाद स्थित मुख्यालय के बाहर भारी मात्रा में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर हापुड़ के एक गांव में गोकशी के नाम पर दो लोगों को इतना पीटा गया कि उनमें से एक की मौत हो गई और एक बुरी तरह से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। इस संबंध में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है और फिलहाल छानबीन जारी है। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने घटनास्थल का दौरा किया, सुने उनकी ये रिपोर्ट।
मिट्टी पर पड़े कत्थई धब्बों से साफ है कि यहाँ किसी का खून बहा है। इसमें भी विवाद नहीं कि भीड़ के हाथों एक शख्स का पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि मोहम्मद कासिम को गाय चुराकर काटने के नाम पर मार डाला गया। पुलिस एफआईआर में इसे रोड रेज का मामला बताया गया है। भीड़ ने 60 साल के एक बुजुर्ग समीउद्दीन को भी बुरी तरह से पीटा। पिछले दो दिनों से वो अस्पताल में भर्ती है। मोहम्मद वकील कहते हैं,
ये हमारा चचा तो न्याय लेने को आया था, चारा था जो कासिम, ये मरा जो है घटना में, ये जादापुर से आ रहा, इनको देख के वो यहाँ पे आ गया। बछेड़ों का काम है ज्यादातर, ये अब 10-15 ढोर इकट्ठे करे गाय बछड़े और हमारे जंगल में कर देते दांग के जी। अब हमारे जंगल वाले जो होते जब नुकसान होता तो वे दांगते, तो वे इनको कहते तुम इनको पकड़ते और काटते हो, इस वजह से उन्होंने हमारे आदमियों को इनको मारा।
मुस्लिम बहुल मदापुर मुस्तफाबाद और राजपूतों का बझेड़ा खुर्द गांव बिल्कुल पास पास बसे हैं। पुलिस ने बझेड़ा खुर्द के दो लोगों को हत्या, कत्ल के इरादे से हमला, बलवा और हथियारों के साथ दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के मुताबिक,
हम लोगों के सामने भी ये चीज़ें आई हैं, बट अभी तक कंक्लूसिवली हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कह सकेंगे। जो इतना तय है कि दो जो एक्यूज्ड हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इस मारपीट में रहा है।
पिलखुआ शहर के सिद्दीकपुरा में है कासिम का घर, एक दो मंजिले मकान में किराए का एक कमरा। कासिम को मंगलवार की सुबह घर के पास के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, लेकिन उनके भाई मोहम्मद सलीम का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें एफआईआर दर्ज करने नहीं दिया।
उन्होंने ये कह दी थी एक केस के दो मुकदमे नहीं लिखूंगा मैं। सर हमने ये भी कही थी उनसे, आप उनकी तरफ से आज मुकदमा लिख रहे हो, वे कल को अपना समझौता कर ले में, तो हम तो जो हमारा हम तो बीच में रह गए, हम तो न इधर रह के रहेंगे न उधर के रहेंगे, तो सीओ साहब बोले मैन गवाह बना देंगे हम आपको।
18 जून को हुई इस घटना में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो यासीन नाम के एक व्यक्ति के जरिए अज्ञात लोगों के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि बझेड़ा की तरफ से आते हुए किसी मोटरसाइकिल सवार ने उनके भाई को टक्कर मारी और उनके भाई के विरोध करने पर बझेड़ा के 25-30 लोग जमा हो गए और समीउद्दीन और कासिम की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। ट्रक ड्राइवर मोहम्मद यासीन घायल भाई समीउद्दीन के साथ एक प्राइवेट अस्पताल में डेरा डाले हैं। वो कहते हैं,
मैं तो कुछ लेट आया था गांव में भी, फिर थाने में भी, जैसे जैसे वो लोग बोलते गए ऐसे ऐसे लिख कर साइन हो गए मेरे। एफआईआर में मोटरसाइकिल लगी, क्या हुआ कैसे ऐसे लगा, लेकिन ऐसे था तो नहीं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बुरी तरह से घायल कासिम को कुछ लोग घेरे खड़े हैं और उसमें दो मिनट और न पहुंचते तो गाय कटी कटाई मिलती और तीन गाय खूंटे से बंधी खड़ी है जैसी बातें हो रही हैं। मगर पुलिस का कहना है कि उसे घटनास्थल से न कोई गाय मिली और न ही गोकशी से जुड़े किसी तरह के हथियार। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी हापुड़ उत्तर प्रदेश।
और अब जानते हैं कि क्या कुछ छपा है आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में। अखबारों के पन्ने पलटकर सिंधुवासिनी स्टूडियो में आ गई हैं। बताइए क्या है आज की बड़ी खबरें।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का जो गठबंधन टूटा है, और ये खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला की हेडिंग है महबूबा को राम राम। दैनिक जागरण ने हेडिंग लगाई है भाजपा ने छोड़ा साथ गिरी महबूबा सरकार। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की, और वो दो दरवाजों के बीच खड़े हैं अंधेरे में और बड़ी गंभीर मुद्रा में नज़र आ रहे हैं। अगली खबर भी इंडियन एक्सप्रेस से। खबर ये है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर जो फायरिंग हुई थी जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई थी, एक न्यायिक आयोग ने कहा है कि किसानों पर गोली चलानी न्यायसंगत था, गोली चलाना, और वो नितांत आवश्यक था। तो उन्होंने जो इसमें शामिल थे फायरिंग में CRPF के जवान और पुलिसकर्मी, उन्हें क्लीन चिट दे दी है। पिछले साल जून में हुआ था ये विरोध प्रदर्शन किसानों का। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के नए आंकड़े आए हैं, उसके मुताबिक भारत अपनी GDP का सिर्फ 1% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करता है
जी।
और दैनिक भास्कर की खबर है कि बलात्कार का आरोप झेल रहे जो दाती महाराज हैं, जो अंडरग्राउंड चल रहे थे, वो अचानक से हाजिर हो गए पुलिस के सामने और उन्होंने कहा कि मैं बलात्कार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता
जी। धन्यवाद सिंधुवासिनी। और अब कार्यक्रम में रुख करते हैं कर्नाटक का, जहां पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की जांच कर रही स्पेशल जांच टीम को 8 नामों की एक लिस्ट मिली है। इसमें गिरीश कर्नाड, KS भगवान समेत कुछ और लोगों के नाम हैं जो हिंदुत्व विचारधारा की आलोचना करते रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इनकी हत्या की कोशिश हो सकती थी। लिस्ट में दूसरा नाम गौरी लंकेश का है, जिनकी हाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
पत्रकार गौरी लंकेश हत्या के मामले में विशेष जांच टीम यानी SIT को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे ये स्पष्ट हो गया है कि अभी और भी कुछ लोगों की हत्या की कोशिश हो सकती है। SIT ने कोर्ट को बताया है कि उन्हें 8 नामों की लिस्ट मिलने हैं, जिसमें दूसरा नाम गौरी लंकेश का था। पुलिस का कहना है कि इस लिस्ट में जिनके नाम है वो सभी हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ बोलते रहे हैं। इनमें से एक नाम निदुमामिदी मठ के स्वामी वीरभद्र चन्नमाला का है, जो लिंगायत समाज से ताल्लुक रखते हैं और हिंदुत्व विचारधारा की खुली आलोचना करते रहे हैं।
सिक्योरिटी बड़ा हिंदे ने तो सरकार,
पुलिस सुरक्षा तो पिछली सरकार ने भी दी है। जब कभी इस तरह के मामले सामने आए हैं, पुलिस सुरक्षा मिली है। हम इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहते क्योंकि हमें किसी तरह का प्रचार नहीं चाहिए। ये थे स्वामी वीरभद्र चन्नमाला के शब्द। दूसरी तरफ लिस्ट में एक नाम तर्कवादी KS भगवान का है, जिन्होंने हर मंच से अपने विचार लोगों तक पहुंचाए हैं। उनका मानना है कि संविधान लोगों को सिर्फ हक नहीं देता है बल्कि उसके साथ साथ कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी कहता है। हमें तो पिछले 3 साल से सरकार ने सुरक्षा दी है, अभी कहा जा रहा है कि 2 और गनमैन भी देने वाले हैं, लेकिन जो लोग हमारी जान लेने की कोशिश करने के सिलसिले में गिरफ्तार हुए हैं वो जानकार नहीं है। ऐसे लोगों को पता नहीं है कि हिंदू धर्म सिर्फ ब्राह्मण धर्म है। ये लोग मानते हैं कि शूद्रों को सिर्फ ब्राह्मणों का गुलाम बनकर रहना चाहिए। अगर वो हमारा संविधान भी पढ़ लेते तो वो हत्या का अपना इरादा वापस ले लेते। ये थे KS भगवान के शब्द। दरअसल गौरी लंकेश हत्या मामले में SIT की ये कामयाबी KS भगवान के हत्या की कोशिश की जांच के मामले की वजह से आई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 5 में से जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो KS भगवान की हत्या की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार किए गए सभी 4 लोग सनातन संस्था और हिंदू जन जागृति संघ के सदस्य हैं। इस सिलसिले में SIT ने कई लोगों के घरों पर छापे मारे थे, जिस दौरान अधिकारियों को एक लंबी पर्ची मिली। इस पर्ची में कई सारे नाम लिखे हुए थे और उनमें से दूसरा नाम पत्रकार गौरी लंकेश का था। पुलिस अधिकारियों ने इस पर्ची में लिखे गए सभी नाम बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन जाहिर है कि SIT का काम जल्द खत्म नहीं होने वाला है। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले एक बार फिर समाचार सिंधुवासिनी त्रिपाठी से।
BBC समाचार सिंधुवासिनी से। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग होने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों के बच्चों को उनके माता पिता से दूर करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि अगर देश में अवैध रूप से घुसने पर माता पिता को जेल होती है तो बच्चों को उनसे दूर करना होगा।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया तिलकराज भाटिया ने और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया अनंत अवस्थी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम के 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। फिलहाल सभी साथियों समेत मानसी दास को दीजिए अनुमति। नमस्कार।